दिन भर तारीख 23 फरवरी दिन बृहस्पतिवार में हूं मोहनलाल शर्मा। बीएमसी चुनाव में शिवसेना बनी सबसे बड़ी पार्टी, लेकिन बीजेपी ने दिखाया दम। महाराष्ट्र के दूसरे हिस्सों में भी खिला कमल।
शिवसेना तो ये कह रही थी कि हमको 60 सीटें देने की भी हमारी औकात नहीं है, अब तो हमारी औकात क्या है वो तो मुंबई के मतदाताओं ने दिखा दिया है।
उत्तर प्रदेश विधानसभा के चौथे चरण में पड़े करीब 61% वोट।
अस्थानी जब सुधरेगा तब राजस्थान पे सरकार सुधरेगी,
यही सोच के डाल रहे हैं कि आगे भविष्य में कुछ न कुछ अच्छा हो, अच्छे दिन की उम्मीद किया जा रहा है।
इराकी सेना ने इस्लामिक स्टेट के कब्जे से मूसल एयरपोर्ट को कराया मुक्त। कार्यक्रम में होगी आपकी राय भी, लेकिन पहले बीबीसी समाचार।
बीबीसी समाचार निखिल रंजन से। भारत की कारोबारी राजधानी मुंबई के नगर निगम चुनाव में शिवसेना को 84 और बीजेपी को 81 सीटों पर जीत हासिल हुई है। 227 सीटों वाली बीएमसी में बहुमत के लिए 114 सीटों की जरूरत है। बीजेपी ने महाराष्ट्र के 10 प्रमुख शहरों के नगरपालिका चुनाव में भी बड़ी जीत दर्ज की है और उसे 8 शहरों में जीत हासिल हुई है। कांग्रेस और एनसीपी को इन चुनावों में भारी नुकसान झेलना पड़ा है। उत्तर प्रदेश में चौथे दौर का मतदान खत्म हो गया है। चुनाव आयोग के मुताबिक 53 सीटों के लिए हुए मतदान में करीब 61% वोट पड़े हैं। मतदान आम तौर पर शांतिपूर्ण रहा। पाकिस्तान के लाहौर शहर में आज एक बम धमाके में कम से कम 6 लोगों की मौत हो गई है। लाहौर में 10 दिन के भीतर ये दूसरा धमाका है। शुरुआती खबरों में पहले जनरेटर में धमाका होने की बात कही गई थी, लेकिन अब पुलिस कह रही है कि ये बम था। धमाका ऐसी जगह हुआ जहां रिहायशी इमारतों के साथ ही बाजार भी है। धमाके से आसपास की दुकानों और कारों के शीशे टूट गए। एक चश्मदीद आसिफ अली पूटा ने बताया,
आके जब मैंने देखा तो यहाँ पे 25-30 के करीब जो लोग थे वो ज़मीन पे बिखरे हुए थे, मुख्तलि बाजार थे, ना कुछ सिक्योरिटी थी ना कुछ था। अब मैं डॉक्टर तो नहीं हूँ कि जो मैं चेक कर सकता है कितनी डेड बॉडीज़ हैं, कितने जिंदा हैं या कितने मर चुके हैं, तो लेकिन 25-30 बल्कि इससे भी ज़्यादा थे और कोई सिक्योरिटी एहलकार नहीं था।
लाहौर धमाके के चश्मदीद आसिफ अली पूटा। लाहौर पाकिस्तान का दूसरा सबसे बड़ा शहर है। बुधवार को सुरक्षा बलों ने पंजाब प्रांत में नए आतंक विरोधी अभियान का ऐलान किया था। इराक की सेना ने मूसल के एयरपोर्ट पर कब्जा कर लिया है। इस्लामिक स्टेट को शहर से बाहर निकालने की मुहिम में इसे अहम सफलता माना जा रहा है। इराकी सेना के साथ चल रहे बीबीसी संवाददाता ने बताया कि सेना एयरपोर्ट के बाहर के अपने ठिकानों से अभी भी मोर्टार फायरिंग कर रही है। एक तरफ सेना के टैंकों से गोले दागे जा रहे हैं तो दूसरी तरफ अमरीकी नेतृत्व वाली गठबंधन की वायु सेना आसमान से उनका साथ दे रही है। इन्हीं के दम पर कुछ ही घंटों में एयरफील्ड पर कब्जा कर लिया गया। इराकी सेना के ब्रिगेडियर मेहदी अब्बास ने बताया, रैपिड रिस्पॉन्स यूनिट की सेनाएं एयरपोर्ट में घुस गई हैं और उन्होंने इसे पूरी तरह से अपने नियंत्रण में ले लिया है। साथ ही उन्होंने वहाँ की एक फैक्ट्री भी खाली करा ली है। अब सेना मूसल के दक्षिण पश्चिमी इलाकों के बेहद पास पहुंच गई है। घनी आबादी वाले इस इलाके में सेना को इस्लामिक स्टेट की तरफ से बड़े हमले की आशंका है। तुर्की की सरकारी समाचार एजेंसी ने खबर दी है कि फ्री सीरियन आर्मी के विद्रोही उत्तर सीरियाई शहर अलबाब तक पहुंच गए हैं। अब तक ये शहर आईएस के कब्जे में था और पिछले 6 महीने से यहाँ भारी लड़ाई चल रही है। विद्रोहियों के सूत्रों से ये भी खबर मिली है कि इस्लामिक स्टेट इस शहर से पीछे हटने पर विवश हुआ है। तुर्की की सेना विद्रोहियों को समर्थन दे रही है। विद्रोही इस्लामिक स्टेट से सीरिया के उत्तरी सीमांत इलाकों में लड़ रहे हैं। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। उत्तर कोरिया की सरकारी समाचार एजेंसी ने पहली बार देश के नेता किम जोंग उन के सौतेले भाई किम जोंग नम की मौत के बारे में जानकारी दी है। हालांकि एजेंसी की रिपोर्ट में पीड़ित को किम जोंग नम के रूप में चिन्हित नहीं किया गया है। इसमें कहा गया है कि मरने वाला शख्स उत्तर कोरिया का नागरिक है जिसके पास राजनयिक पासपोर्ट है। इसके साथ ही यह भी कहा गया है कि उसकी मौत दिल की बीमारी से हुई है। समाचार एजेंसी ने जहर देने की खबरों को झूठ बताने के साथ ही यह भी कहा है कि मलेशिया दक्षिण कोरिया के साथ मिलकर साजिश कर रहा है। सोमालिया के नए राष्ट्रपति मोहम्मद अब्दुल्लाही फरमाजो ने एक राजनीतिक रूप से नए शख्स को अपना प्रधानमंत्री बनाया है। हसन अली खेरे राहत एजेंसियों के लिए काम करते रहे हैं। वो नॉर्वियन रिफ्यूजी काउंसिल के रीजनल डायरेक्टर रहे हैं। उन्हें पूर्व राष्ट्रपति हसन शेख महमूद का करीबी माना जाता है। बीबीसी समाचार।
बीबीसी हिंदी सेवा की दूसरी सभा दिनभर में आपका स्वागत है। इस कार्यक्रम को आप रेडियो के साथ साथ bbchindi.com पर भी लाइव सुन रहे हैं। मेरा नाम है मोहनलाल शर्मा। बृहन मुंबई नगर निगम यानी कि बीएमसी के चुनाव के नतीजों के बाद शिवसेना और इसकी पूर्व सहयोगी व वर्तमान में सबसे बड़ी प्रतिद्वंदी भारतीय जनता पार्टी दोनों के खेमों में इस समय जश्न का माहौल है। भारतीय जनता पार्टी को इन चुनावों में 81 सीटें मिली हैं जबकि शिवसेना को 84। शिवसेना को मुंबई में केवल 3 सीटों की बढ़त मिली है। ठाणे जिले में भी इसे कामयाबी मिली है लेकिन महाराष्ट्र के कई अन्य नगर पालिका चुनावों में भारतीय जनता पार्टी ने अपना परचम फहराया। बीबीसी संवाददाता जुबैर अहमद ने इन चुनावों पर नजर रखी है।
जश्न का माहौल इधर भी था और उधर भी। नतीजों के आने के बाद शिवसेना और भाजपा के समर्थक अपने अपने खेमों में जश्न मना रहे हैं। मुंबई में शिवसेना बड़ा भाई है लेकिन थोड़ा ही बड़ा। नतीजों ने यह भी जाहिर कर दिया है कि भाजपा का कद काफी ऊंचा हुआ है। लोगों का कहना है कि भाजपा से नाता तोड़कर अलग चुनाव लड़ने के शिवसेना के फैसले से भाजपा अधिक खुश होगी। पिछले चुनाव में भाजपा को 31 सीटें मिली थीं, इस बार अब तक इसे 81 सीटें हासिल हुई हैं और शिवसेना को 84, जबकि पिछली बार इसे 75 सीटें मिली थीं। भाजपा के महाराष्ट्र राज्य के प्रवक्ता माधव भंडारी कहते हैं कि मुंबई में जनता ने बता दिया है कि पार्टी की औकात क्या है।
शिवसेना तो ये कह रही थी कि हमको 60 सीटें देने की भी हमारी औकात नहीं है। अब तो हमारी औकात क्या है वो तो मुंबई के मतदाताओं ने दिखा दिया है।
चुनाव से पहले शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने भाजपा से 25 साल पुराना गठबंधन तोड़ दिया था। कहने को उन्होंने ये कदम सीटों के बंटवारे से उठे मतभेद को लेकर उठाया था लेकिन विशेषज्ञों के अनुसार असल वजह थी भाजपा की राज्य में बढ़ती लोकप्रियता। अब तक इस रिश्ते में शिवसेना को बड़े भाई के रूप में देखा गया था लेकिन राज्य में 2014 में एक साथ हुए आम चुनाव और विधानसभा चुनाव में भाजपा ने पहली बार शिवसेना से अधिक सीटें लाकर बड़े भाई का दर्जा प्राप्त कर लिया था। शिवसेना राज्य और केंद्र सरकारों में शामिल जरूर हुई लेकिन अपना मन मार कर। तो क्या अब शिवसेना भाजपा का गठबंधन दोबारा स्थापित हो सकेगा? माधव भंडारी कहते हैं,
अब इसके बारे में जो कुछ निर्णय करना है वो शिवसेना ने करना है क्योंकि युति तोड़ने की घोषणा उन्होंने की। युति के बारे में हमको आगे क्या करना है ये सारी बातें भी शिवसेना ने कही है, तो शिवसेना ने अपना निर्णय करना है।
और आप लोगों का दरवाजा खुला हुआ है?
हमने तो विधानसभा के चुनाव में भी कहा था और हमारा दरवाजा खुला था। इसका सबसे बड़ा सबूत यह है कि शिवसेना जब तक सरकार में शामिल नहीं हुई तब तक हमने उनके लिए इंतजार किया।
मुंबई और ठाणे को अलग रखें तो राज्य के दूसरे कई शहरों में नगरपालिका चुनाव में भाजपा का प्रदर्शन काफी शानदार रहा।
पूरे महाराष्ट्र में शिवसेना से लेकर कांग्रेस राष्ट्रवादी सभी ने नोटबंदी का मुद्दा चुनाव में उछालने की कोशिश करी थी लेकिन ये मुद्दा महाराष्ट्र की जनता ने 1 दिसंबर में जो नगर पालिकाओं के चुनाव हुए थे उसमें भी नकारा था, आज भी नकारा है।
बीएमसी के चुनाव से तो ये साबित हो गया कि असल संघर्ष शिवसेना और भाजपा के बीच था। कांग्रेस पार्टी, महाराष्ट्र न्यू निर्माण सेना और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का लगभग सफाया हो गया। कांग्रेस को केवल 31 सीटें मिली। पार्टी के नेता संजय निरुपम ने खराब प्रदर्शन के कारण इस्तीफे की पेशकश की। जुबैर अहमद, बीबीसी दिल्ली।
शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी राज्य में इन सत्ताधारी पार्टियों ये सत्ताधारी पार्टियां हैं लेकिन इन चुनावों में ये एक दूसरे के खिलाफ संघर्ष कर रही थी। विश्लेषण के लिए मैंने बात की वरिष्ठ पत्रकार समर खड़स से और पूछा कि हालांकि ये छोटे चुनाव थे लेकिन इन नतीजों के मायने क्या है।
ये छोटे चुनाव नहीं है, दरअसल मिनी विधानसभा ही इसे कहना पड़ेगा क्योंकि महाराष्ट्र की 25 जिला परिषद और पंचायत समिति 118 और 10 महानगर पालिका इनके ये चुनाव थे तो ये इसके मायने बहुत ज्यादा है। चुनाव के जो नतीजे निकले हैं वो अगर देखें हम तो वो मायने बहुत ही गंभीर है ऐसा मुझे लगता है क्योंकि न केवल शहरी भागों में भाजपा और शिवसेना आगे गई है, ग्रामीण इलाकों में कांग्रेस और राष्ट्रवादी का बेस रहा है, वहां पर भी भाजपा और शिवसेना की जो बढ़त है वो पहले कभी नहीं हुई थी।
क्या इस जीत को बीजेपी की जीत कहना बेहतर होगा? भारतीय जनता पार्टी ने अपना परचम फहरा दिया है।
भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा नहीं कह सकते कि 100% जीत हासिल की है लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने एक हवा तैयार की और उस हवा में जहां पर उनके कभी गढ़ नहीं थे ऐसे अपने कांग्रेस और राष्ट्रवादी के गढ़ों को जो है उन्होंने हिला दिया है। दूसरी बात, महाराष्ट्र की पूरी राजनीति में ये एक बड़ा सा कॉन्ट्राडिक्शन उभर कर सामने आ रहा है भारतीय जनता पार्टी का विरोधक करके शिवसेना सामने आ रही है, कांग्रेस और राष्ट्रवादी नहीं सामने आ रही है। दोनों की विचारधारा एक ही है, हिंदुत्व की ही विचारधारा पर दोनों पार्टियां चलती है, दोनों सत्ता में, राज्य की सत्ता में दोनों पार्टियां एक साथ है, लेकिन उसके बावजूद शिवसेना जो है वो भाजपा का विरोध करती है और वही भाजपा को रोक सकती है, ऐसा एक जनरल परसेप्शन महाराष्ट्र में बन गया है।
क्या इन चुनावों के परिणामों ने शिवसेना को आईना दिखाने का काम किया?
मुझे ऐसा लगता नहीं है। इसका कारण यह है कि आज भी अगर मुंबई के आप जो नतीजे अगर देखेंगे तो दो तीन आंकड़ों से क्यों ना हो, शिवसेना जो है वो पहले क्रमांक पर रही है, भारतीय जनता पार्टी दूसरे क्रमांक। भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी जीत जो है वो है पूना महानगर पालिका और पिंपरी उसके बगल की, लेकिन मुंबई और थाना जो है, थाने की बगल की जो सैटेलाइट सीट कहलाती है, यहाँ दोनों जगह शिवसेना ने अपना पहला नंबर जो है वो कायम रखा है।
क्या भविष्य में दोनों यानी कि जो भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना फिर से एक होते आपको दिखाई दे रहे हैं?
देखिए, शिवसेना जो है जब तक जो है केंद्र की सरकार जब तक मजबूती से बनी रहेगी और प्रधानमंत्री जी का जो स्थान है उस स्थान को कोई भी चैलेंज जब तक नहीं होगा दिल्ली में, तब तक मुझे लगता नहीं कि शिवसेना यहाँ पर कुछ बहुत ज्यादा कुछ कर पाएगी। और ये जो कहा जाता है कि मुंबई के चुनाव के बाद शिवसेना जो है सत्ता से निकल जाएगी, ये मुझे लगता है कि ये होना बहुत ही मुश्किल बात है, क्योंकि शिवसेना उनकी ताकत जानती है।
शिवसेना बनाम भारतीय जनता पार्टी नगर निकाय चुनावों का विश्लेषण कर रहे थे वरिष्ठ पत्रकार समर खड़स। और अब कार्यक्रम में एक और चुनाव, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव का आज चौथा चरण भी संपन्न हो गया। चुनाव आयोग के मुताबिक 61% लोगों ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। 12 जिलों की कुल 53 सीटों पर मतदान हुआ। कुछ जगहों पर मतदान के दौरान हिंसक झड़पों की खबरें आईं, लेकिन आमतौर पर ये शांतिपूर्ण रहा। लेकिन ईवीएम मशीनों के खराब होने और उसके कारण मतदान में बाधा पहुंचने की शिकायतें कई जगह से आती रहीं। हमारे सहयोगी समीर आत्मज मिश्र आज इलाहाबाद में थे और उन्होंने हमें वहां से ये रिपोर्ट भेजी है।
मतदान सुबह 7 बजे शुरू हुआ और लोगों की शिकायतें भी सुबह से आने लगी। कुछ जगहों पर तो मतदान केंद्र इतनी दूर बनाए गए थे कि लोग देर तक भटकते रहे। इलाहाबाद के शहर उत्तरी विधानसभा क्षेत्र में सुबह 7 बजे ही ऐसे कई लोग मिले जिन्हें कथित तौर पर इधर से उधर भटकाया जा रहा था। बूथ तक पहुंचने के बाद कई जगह ईवीएम मशीनें खराब होने की शिकायतें भी लगातार आती रहीं। सुबह करीब 9 बजे एक बूथ पर इसे लेकर कुछ लोग बेहद गुस्से में थे।
यहाँ पर मैंने 1 घंटा लाइन में खड़ा था, यहाँ मशीन खराब थी, काफी समय से मैं खड़ा था, अब जाके मशीन ठीक हुई है।
क्या खराबी थी, कुछ बताया गया आप लोग?
नहीं, हम लोग को कुछ नहीं बताया गया। 8 बजे से लेकर 9:15 बजे तक मशीन खराब थी।
चौथे चरण में आज 12 जिलों की 53 सीटों पर मतदान हुआ। इस चरण में इलाहाबाद के अलावा बुंदेलखंड के सभी 7 जिलों, रायबरेली, प्रतापगढ़, कौशाम्बी और फतेहपुर में भी मतदान हुआ। दिन में ही महोबा में 2 पार्टियों के कार्यकर्ताओं के बीच हिंसक झड़प की खबर मिली, हालांकि कोई अप्रिय घटना नहीं होने पाई। इलाहाबाद के केएन काटजू कॉलेज के मतदान केंद्र पर कुछ मतदाताओं से हमारी चुनावी मुद्दों के बारे में बात हुई।
स्थानीय और राजस्थान दोनों को लेकर चलना है, इसलिए कि जी स्थानीय जब सुधरेगा तब राजस्थान पे सरकार सुधरेगी।
यही सोच के डाल रहे हैं कि आगे भविष्य में कुछ न कुछ अच्छा हो, अच्छे दिन की उम्मीद किया जा रहा है।
कुछ युवा है, आप लोग बताएं जरा सा क्या इश्यूज हैं?
पहली बात तो एम्प्लॉयमेंट की बहुत ही ज्यादा यहाँ पे कमी हो, पूरे इलाहाबाद में या तो हर जगह एम्प्लॉयमेंट की कमी है, जो कि युवाओं का सबसे पहली प्राथमिकता होनी चाहिए।
आप पहली बार वोट डाल रहे हैं?
जी, पहली बार मैं वोट डाल रहा हूँ। बहुत एक्साइटेड है, बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड है।
इस चरण में कई सीटों पर दिलचस्प मुकाबला हो रहा है। इलाहाबाद के शहर पश्चिमी विधानसभा सीट पर पिछले 25 सालों में पहली बार अतीक अहमद चुनावी मैदान में नहीं है। उनकी जगह समाजवादी पार्टी ने छात्र नेता ऋचा सिंह को टिकट दिया है। ऋचा सिंह इसकी वजह बताती हैं।
देखिए, माननीय अखिलेश यादव जी ने एकदम स्पष्ट किया है कि पूरे उत्तर प्रदेश में उन्होंने अपने नए युवा संघर्षशील लोगों को मौका दिया है।
वहीं इलाहाबाद की मेजा सीट पर बीजेपी ने नीलम करवरिया को मैदान में उतारा है। नीलम करवरिया के पति पूर्व विधायक उदय भान, 2 भाइयों जिनमें एक पूर्व सांसद और एक पूर्व विधायक हैं, उनके साथ हत्या के एक मामले में पिछले काफी दिनों से जेल में बंद हैं। अपने कुछ कार्यकर्ताओं के साथ एक बूथ पर नीलम करवरिया से मुलाकात हो गई, तो हमने उनसे पूछा कि इस स्थिति में वो चुनावी प्रबंधन कैसे कर रही हैं।
आज चुनाव मेरे हिसाब से तो कार्यकर्ता लड़ते हैं और कार्यकर्ता मेरे साथ में हैं, इसलिए मुझे दिक्कत नहीं हो रही है।
जहां तक मुद्दों की बात है तो इलाहाबाद में विकास के तमाम मुद्दों के साथ ही छात्रों के मुद्दे भी काफी अहम रहते हैं। स्थानीय पत्रकार अखिलेश मिश्र कहते हैं,
छात्रों का मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा रहा, कुलपति को लेकर लड़कों ने बड़ा आंदोलन किया। इवन जो भारतीय जनता पार्टी सरकार है उससे जुड़े हुए छात्र संगठन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्रों ने कुलपति का विरोध किया।
जानकारों का ये भी कहना है कि पार्टियां जीत हार के चाहे जो दावे करें, लेकिन कई सीटों पर बाहरी उम्मीदवारों को थोपना सभी दलों को महंगा साबित हो सकता है। समीर आत्मज मिश्र, BBC इलाहाबाद।
दिन भर शॉर्टवेव 49, 41, 31 और 25 मीटर बैंड यानी 5,885, 7,600, 9,740, 11,995 किलोहर्ट्ज और मीडियम वेव 1,413 किलोहर्ट्ज पर।
आप सुन रहे हैं BBC हिंदी सेवा की दूसरी सभा दिन भर। आपको याद ही होगा कि चंद महीने पहले दिल्ली का JNU विश्वविद्यालय यानी कि जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय चर्चा में था। वजह थी कन्हैया और उमर खालिद पर देशद्रोह के नारे लगाने के आरोप और इस मामले में उन्हें बेल भी मिली हुई है। उमर खालिद को लेकर अब मामला दिल्ली विश्वविद्यालय में गर्म है। मामला यहां पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद और वाम दलों की छात्र इकाइयों को लेकर है। छात्र संगठन ABBP और ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन ISA के सदस्यों के बीच बीते दो दिनों में दिल्ली विश्वविद्यालय DU में हिंसक झड़पें हुई हैं। वहां पर आज पहुंची हमारी सहयोगी दिव्या आर्य।
दिल्ली पुलिस के हेडक्वार्टर के सामने आज सुबह से ही छात्र जमा होने शुरू हो गए। इनकी मांग थी कि दिल्ली पुलिस मंगलवार और बुधवार को दिल्ली विश्वविद्यालय में हुई हिंसा के खिलाफ FIR दर्ज करे और उसकी तहकीकात हो। दरअसल मंगलवार को दिल्ली विश्वविद्यालय के रामजस कॉलेज में एक सेमिनार आयोजित किया गया था जिसमें जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के छात्र उमर खालिद भी वक्ता थे, पर वो मारपीट के डर से वहां पहुंच नहीं सके और वहीं से विवाद शुरू हुआ। आखिरकार आज उमर पुलिस हेडक्वार्टर आए।
मुझे वहां के ऑर्गेनाइजर्स ने बताया कि स्थिति क्या हो रही है। पहले बताया कि ABBP ने मेन गेट घेर लिया है, आप पीछे वाले रास्ते से आइएगा। जब मैं 15 मिनट बाद फोन करके बोला, मैं रास्ते में ही था, JNU से निकल चुका था, कि ABBP ने चारों गेट घेर लिए हैं और दिल्ली पुलिस ने ऑर्गेनाइजर्स को बोला कि अगर कोई भी हिंसा होती है उमर के खिलाफ ये सेमिनार में, तो उसकी जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ ऑर्गेनाइजर्स का है। ये बहुत शर्मनाक ऐसा एक एग्जाम्पल दिल्ली पुलिस सेट कर रही है कि जो जिस पे अटैक हो वो जिम्मेदार है अपने ऊपर अटैक पे, और जो अटैक करे उसको खुली छूट है।
आप उस सेमिनार में क्या बोलने वाले?
देखिए, मेरा PhD का विषय आदिवासी इलाकों पे मेरा काम है, उसी चीज में मुझे बोलने का उन्होंने इनविटेशन दिया था। I agreed very heartily।
पिछले साल उमर खालिद पर JNU में कथित तौर पर भारत विरोधी नारे लगाने का आरोप लगा था और FIR दर्ज की गई थी। हालांकि उसमें चार्जशीट आज तक दायर नहीं हुई है। उमर खालिद के मुताबिक अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की ओर से किया गया विरोध और मारपीट उनके खिलाफ नहीं बल्कि आजाद बहस के खिलाफ था। पुलिस हेडक्वार्टर के सामने प्रदर्शन कर रहे छात्रों में से कई पिछले दो दिनों की मारपीट के चश्मदीद थे।
मैं पहले दिन भी था कॉन्फ्रेंस रूम में, जब वो कॉन्फ्रेंस हॉल के अंदर जब बाहर से स्टोन पेंटिंग कर रहे थे ABBP वाले, कांच टूट रहे थे बिल्कुल पीछे। सो यस्टरडे आल्सो दे बीट अप पीपल लाइक
देयर आई वाज हिट बाय हेड बाय ब्रिक। अच्छा, आई वाज हिट बाय 2 bricks। मेरे एक दोस्त को भी लगी, उसका हार्ट फ्रैक्चर हो चुका है, वो यहाँ पे नहीं है अभी। एक के सर में भी लगी थी ऐसी सेम।
ABBP ने मारपीट के आरोपों से इनकार करते हुए दावा किया है कि दोनों दिन वाम पार्टियों के छात्र संघों ने भी उन पर हमले किए। उन्होंने दिल्ली पुलिस के पास शिकायत भी की है। कानून व्यवस्था के विशेष पुलिस आयुक्त SBK सिंह ने बताया,
कई कंप्लेंट्स आपके ग्रुप से भी मिला है और दूसरे ग्रुप से भी मिला है, तो हम उस पे आपकी बात पूरी सुनेंगे, आपका स्टेटमेंट रिकॉर्ड करेंगे और उस पे जो भी कानूनी कार्रवाई होगी उस पे हम जरूर करेंगे, ये आपको मैं आश्वासन देता हूँ।
प्रदर्शनकारी छात्रों ने पुलिस पर छात्रों से मारपीट करने का आरोप भी लगाया है और प्रशासनिक जाँच की मांग की है। दिव्या आर, BBC दिल्ली।
भारत प्रशासित कश्मीर के रफीक अहमद और मोहम्मद हुसैन फाजली को साल 2005 में दिल्ली के सिलसिलेवार बम धमाकों के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। 12 साल जेल में बिताने के बाद उन्हें अदालत से रिहाई मिली। जिस दिन दिल्ली में धमाके हुए उस दिन रफीक यूनिवर्सिटी में क्लास कर रहे थे। जिला गांदरबल में जिस वक्त मोहम्मद रफीक शाह को गिरफ्तार किया गया तब घुप अंधेरा था। जब वो रिहा होकर पहुंचे उस वक्त भी वहां पर अंधेरा था। उनके घर पहुंचने पर क्या कुछ हुआ, सुनिए माजिद जहांगीर से।
कश्मीर के जिला गांदरबल के आलिस्टिंग शुहामा में 42 साल के मोहम्मद रफीक शाह को जब गिरफ्तार किया गया था उस वक्त घुप अंधेरा था, और जब वो 12 साल के बाद जेल से रिहा होकर घर पहुंचे तो आज भी घुप अंधेरा था। रफीक से मिलने के लिए उनके घर पर लोग आ रहे हैं, वो हर एक के साथ गले मिल रहे हैं। रफीक अहमद और मोहम्मद हुसैन फाजली को वर्ष 2005 में दिल्ली सिलसिलावार बम धमाकों के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। हालिया दिनों में दोनों को दिल्ली की एक निचली अदालत ने बरी कर दिया है। جس دن دلی میں دھماکے ہوئے تھے رفیق یونیورسٹی میں کلاس کر رہے تھے، یہ پوچھنے پر کہ پوری یونیورسٹی میں آپ کو ہی کیوں نشانہ بنایا گیا تھا، انہوں نے کہا
ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی تھی کہ اسٹوڈنٹس یونین کو ریوائیو کرنے میں ایکٹیو تھا وہاں، اور جو بھی ایٹراسٹیز ہوتی تھی جب بھی کوئی وائس ریز ہوتی تھی اس حوالے سے یونیورسٹی میں، اس حوالے سے میں ہمیشہ پیش رہتا تھا وہاں، ہو سکتا ہے یہ وجہ ہو سکتی تھی۔
رفیق جب یونیورسٹی میں پڑھتے تھے تو وہ ہر طرح کی کتابیں پڑھتے تھے۔
میں مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ، علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ، حسن البنا شہید رحمۃ اللہ علیہ، سعید قطب شہید رحمۃ اللہ علیہ، ان کا میں لٹریچر پڑھا ہوں۔
رفیق نے ایم اے کے بعد سعید ابوالعلا مودودی یا پھر سعید قطب پر پی ایچ ڈی کرنے کا من بنایا تھا۔ جیل میں بھی 12 سال کے دوران رفیق کا زیادہ سمے پڑھائی میں گزرتا تھا۔ ایم اے کا فائنل سیمسٹر رفیق نے جیل میں رہنے کے دوران 69% کے ساتھ سال 2010 میں پاس کیا۔ حالیہ دنوں میں جب عدالت میں رفیق کے کیس کا فیصلہ ہونا تھا تو رفیق کو رہائی کی امید تو تھی لیکن وہ بہت گھبرا گئے تھے۔
وہ تھوڑا ٹیسٹنگ ٹائم تھا میرے لیے، اس دن جس دن ہمارا فیصلے کا دن تھا وہ تھوڑا بھی ٹیسٹنگ ٹائم فار می۔
2005 میں دلی میں مارے گئے 67 لوگوں کے بارے میں رفیق کہتے ہیں،
مجھے ان پریواروں سے کے لوگ اس بلاسٹ میں مارے گئے مجھے بھی ہمدردی ہے، انہوں نے بھی سفر کیا اور میں نے بھی سفر کیا، میں ان کی سفرنگز کو محسوس کر سکتا ہوں۔
رفیق کو رات کے 11:30 اپنے گھر سے گرفتار کیا گیا تھا۔ رفیق کے پتا محمد یاسین شاہ کہتے ہیں کہ 12 سال کا سفر ان کے لیے ایک بڑی مصیبت تھا۔
12 سال کا سفر بہت مصیبت میں گزرا، میں خوش ہوں اس کی بے گناہی ثابت ہوئی۔
رفیق کی ماں محمودہ کہتی ہیں کہ ان کا بیٹا بہت قابل تھا جس کی زندگی کو برباد کیا گیا۔
لائف گئی میں خراب، بس یہ سب قابل بچے،
میرا بیٹا بہت قابل لڑکا تھا، ان کی زندگی کو برباد کر دیا گیا۔ یہ تھے محمودہ کے شبد۔ رفیق اپنی زندگی کو اب نئے حوصلے اور نئے عزم کے ساتھ پھر سے شروع کرنا چاہتے ہیں۔ ماجد جہانگیر، بی بی سی نیوز، سری نگر۔
2005 میں جو دلی میں دھماکے ہوئے تھے اس مقدمے سے بری رفیق کی کہانی آپ سن رہے تھے، اور اب کارکرم میں بات کریں گے آپ کی بھیجی چٹھیوں کی۔
آپ کی رائے میں ہوں آپ کے ساتھ اندو پانڈے، اور آج ہمارے ساتھ ہیں،
نمسکار، میں ہوں راجیش پریادرشی۔
تو راجیش جی، چٹھیوں کا سلسلہ شروع کریں۔
جی بالکل، بنا دیری کے۔
ذیشان نیئر ہیں، گرام تریا پوستاخ، ضلع بیگوسرائے، بہار سے، کہتے ہیں کہ کوریج جاری رہے گی، اتر پردیش سے رپورٹنگ اچھی لگ رہی ہے، دنیا جہاں میں کم جونگ نام کی ہتیا کے پیچھے کون، اس ہتیا پہ لمبا اتہاس سنا، بہت ہی گیان وردھک لگا، اور بی بی سی کی نئی بھاشا کب آ رہی ہے۔
ذیشان صاحب، بہت شکریہ خط لکھنے کے لیے، آپ ہمارے نیمت شروتا ہیں۔ بی بی سی کی نئی بھاشاؤں کے لانچ کی تیاریاں چل رہی ہیں، کام چل رہا ہے، اس کی کوئی طے تاریخ نہیں ہے، ابھی اس میں کچھ مہینوں کا وقت لگے گا۔
اور وکاس شرما ہیں، کروکشیتر سے، لکھتے ہیں کہ ہریانہ کی جاٹ آندولن پہ کافی دیر سے بی بی سی نے رپورٹ کی، اور رپورٹ جو کی اس میں بہت ہی خامیاں ان کو لگی۔
جیسے اگر انہوں نے کوئی خامیاں گنائی۔
ہاں، انہوں نے کہا ہے کہ پرکاش سنگھ، جنہوں نے اس پورے تانڈو پہ ایک رپورٹ تیار کی تھی جو کہ ایک بہت ہی وسترت دستاویز ہے، ان تک سے کوئی بات نہیں ہوئی۔
پرکاش سنگھ جو پچھلا جو جاٹ آندولن تھا، اس سمے جو ہنسا ہوئی تھی، جو بلاتکار کے آروپ لگے تھے، جو توڑ پھوڑ ہوئی تھی، اس کے بعد انہوں نے جانچ کی تھی اور اس جانچ کی انہوں نے وسترت رپورٹ دی تھی۔ ہم نے پرکاش سنگھ سے کئی بار انٹرویو کیا اس سلسلے میں، اور اس گھٹنا کو اور جاٹوں کے اس آندولن کو ہم نے اب پورے وستار سے کوریج دیا تھا، لیکن اس بار جو نئے سال میں نئے ڈھنگ سے دوبارہ شروع ہوا ہے جاٹ آندولن، جس میں اس بار مہیلائیں آگے دکھ رہی ہیں، ہمیں یہ لگا کہ وہ ایک نئی چیز ہے جس کو ہمیں ٹھیک سے رپورٹ کرنا چاہیے، بجائے اس کے کہ پچھلے آندولن میں کیا ہوا تھا۔
جی، اور یہ ہیں آشوتوش کمار پانڈے، اور یہ دیکھیے، لکھتے ہیں اپنی بہن پوجا پانڈے کے ساتھ۔
بہت اچھی بات ہے، آشوتوش کمار پانڈے نے پتر لکھا ہے، اور ہمیں بہت اچھا لگا کہ انہوں نے اپنی بہن کا نام بھی اس پوسٹ میں لکھا ہے۔ ہم ہمیشہ یہ کہتے ہیں اور امید رکھتے ہیں کہ ہماری جو महिला श्रोता हैं वो भी हमें पत्र लिखे हैं, उनके पत्र ज़रा कम आते हैं, तो ये आशुतोष कुमार पांडे ने ये कमी पूरी कर दी। ये कितनी प्यारी सी बात
है। जी, ये चिट्ठी आई है हमारे पास, ग्राम पोस्ट गई थी, थाना बगेन, जिला बक्सर, बिहार से। आशुतोष कुमार लिखते हैं कि संदीप सोनी की अगुवाई में बहुत ही सघनदार और शानदार बीबीसी इंडिया बोल का मंच सजा। दिवंगत पत्रकार विनोद मेहता के जनरल अशोक मेहता अपनी बातों में तल्ख दिखाई पड़ रहे थे। राधा कुमार को मैं पहली बार सुन रहा था, मैं केवल दिलीप पंडगांवकर को ही इस मामले के लिए जानता था।
बहुत धन्यवाद आशुतोष जी पत्र लिखने के लिए।
आगे इन्होंने लिखा है कि राजेश प्रियदर्शी ने भी एक वाहवाही लूटने वाला काम किया है। वेब पेज पर जो मुस्लिम आबादी संबंधित लेख लिखा है वो तारीफ के योग्य है।
धन्यवाद।
और आगे लिखते हैं कि सुमिरन प्रीत कौर की आवाज मुझे पता नहीं क्यों अच्छी लगने लगी है।
ये अच्छी बात है, सुमिरन प्रीत जी को ये बात बता दी जाएगी। और ऐसा लग रहा है कि इन्होंने पूरे एक हफ्ते की समीक्षा।
हाँ, एक्चुअली इन्होंने ऐसे ही लिखी है। देखिए आगे, अपूर्व कृष्ण की आवाज पिछले दो दिनों से नमस्कार भारत में सुनाई दे रही है, अच्छा लग रहा है।
और अगली चिट्ठी कहाँ से आई है?
अगली चिट्ठी हमारे पास आई है अरुण कुमार छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश से। इन्होंने लिखा है कि बीबीसी द्वारा 2005 में दिल्ली के डीटीसी बस में बम विस्फोट से 80 यात्री को सुरक्षित बचाने वाले बस ड्राइवर साहब से बातचीत बहुत अच्छी लगी।
बहुत शुक्रिया। हमने इस घटना में जितने लोग थे, जो जांच अधिकारी थे पुलिस के, जो पीड़ित परिवार के लोग थे उनसे, और जिन लोगों को अदालत ने बेकसूर मानकर बरी कर दिया उन लोगों से, जिनकी कश्मीर से भी हमने लोगों से बात की और सबकी आवाज़ आप तक पहुंचाने की कोशिश की। आपको ये अच्छा लगा, इसके लिए शुक्रिया।
और एक बहुत ही प्यारी सी मेल है हमारे पास नवीन पांडे की, गोरखपुर उत्तर प्रदेश से। मुझे लगता है कि राजेश जी एक बार आप देख लीजिए क्योंकि इन्होंने कैसे लिखा है। बीबीसी और शुरुआत, उसके बाद चार लाइनें, फिर बीबीसी और यादें, बीबीसी और तोहफा, बीबीसी हिंदी और सफलता, और बीबीसी एक ज़बरदस्त टीम। आगे लिखते हैं सुझाव और निवेदन, तो ये पढ़ लेते हैं। विनम्र निवेदन है कि आप लोग यदि इस दौरान गोरखपुर आते हैं तो नेताओं से इतर हम मित्रों की तरफ से चौराहे पर एक चाय और चर्चा का निमंत्रण ज़रूर स्वीकार करें।
बहुत बहुत आपका शुक्रिया इतने विस्तार से पत्र लिखने के लिए। आपका जो पूरा पत्र है हम इस कार्यक्रम में नहीं पढ़ पा रहे हैं, लेकिन हमने इसको पढ़ा ज़रूर, और आपके निमंत्रण के लिए भी धन्यवाद। और अब चलते चलते हम अपने श्रोताओं को अपना पता बता दें, अगर वो डाक से चिट्ठी भेजना चाहें तो हमारा पता है बीबीसी हिंदी सेवा, पोस्ट बॉक्स नंबर 3035, नई दिल्ली 110003। और अगर आप ईमेल भेजना चाहें तो पता वही है hindi.letters@bbc.co.uk।
इसी के साथ नमस्कार।
आपने अपनी चिट्ठियां सुन ली और अब कार्यक्रम में बारी है खेल समाचारों की। इंदु पांडे चिट्ठियां पढ़ चुकी हैं और चिट्ठी पढ़ने के बाद खेल की खबरें लेकर हाजिर हो गई हैं। तो इंदु, क्या चल रहा है खेल की दुनिया में?
खेल की दुनिया में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच चार क्रिकेट टेस्ट मैचों की सीरीज का पहला मैच आज पुणे में खेला गया। भारतीय टीम विराट कोहली के नेतृत्व में 19 टेस्ट मैचों से अपराजय बनी हुई है और वो घरेलू मैदान पर अपना शानदार प्रदर्शन बरकरार रखना जरूर चाहेगी। भारतीय जमीन पर मेजबान गेंदबाजों का मुकाबला कितना मुश्किल है ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों को, इसका अंदाज़ा पहले टेस्ट मैच के पहले दिन हो ही गया होगा। उमेश यादव की अगुवाई में भारतीय गेंदबाजों ने पुणे टेस्ट के पहले दिन 256 रन खर्च किए और ऑस्ट्रेलिया के 9 बल्लेबाजों को पवेलियन लौटा दिया। 5 गेंदबाजों के साथ उतरे भारतीय कप्तान विराट कोहली ने उमेश यादव को सबसे आखिर में गेंद थमाई, लेकिन पहले दिन मेहमान टीम को सबसे ज्यादा झटके उन्होंने ही दिए। टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला करने वाली ऑस्ट्रेलियाई टीम को डेविड वार्नर और मैथ्यू रेनशा की जोड़ी ने अच्छी शुरुआत दिलाई। ओपनर्स की बात करें तो पहले विकेट के लिए 82 रन जोड़े कप्तान स्टीव स्मिथ समेत बाकी बल्लेबाज बड़ा स्कोर नहीं बना सके। इसके अलावा मिशेल स्टॉक ने बल्ले से दम दिखाया और वो 58 गेंदों पर नाबाद 57 रन बनाए। उनके बल्ले से अब तक 5 चौके और 3 छक्के निकले हैं।
बहुत बहुत शुक्रिया इंदु पांडे खेल की खबरें पढ़ने के लिए। और कार्यक्रम में इससे पहले कि हम मुख्य समाचार सुने, यहाँ पर आपको बता दें कि bbchindi.com पर एक बहुत ही प्यारी सी स्टोरी आपके लिए है कि टैगोर विक्टोरिया के प्रेम का वो अफसाना। इस रिश्ते पर एक फिल्म बनी है थिंकिंग ऑफ हिम। ये कहानी क्या है, स्टोरी क्या है, को पढ़ने के लिए bbchindi.com पर आइए। और अब हम सुनेंगे मुख्य समाचार।
बीबीसी समाचार। मुंबई के नगर निगम चुनाव में शिवसेना को 84 और बीजेपी को 81 सीटों पर जीत हासिल हुई है। इराक की सेना ने मुसल के एयरपोर्ट पर कब्जा कर लिया है। इस्लामिक स्टेट को शहर से बाहर निकालने की मुहिम में इसे अहम सफलता माना जा रहा है। इराकी सेना के साथ चल रहे बीबीसी संवाददाता ने बताया कि सेना एयरपोर्ट के बाहर के अपने ठिकानों से अभी भी मोर्टार फायरिंग कर रही है। एक तरफ सेना के टैंकों से गोले दागे जा रहे हैं तो दूसरी तरफ अमरीकी नेतृत्व वाली गठबंधन की वायुसेना आसमान से उनका साथ दे रही है। बीबीसी समाचार।
तो दूसरी सभा दिनभर के इस अंक में बस इतना ही। शाकिर आलम के साथ मोहनलाल शर्मा को कार्यक्रम समाप्त करने की अनुमति दें। सुबह 6:30 बजे नमस्कार भारत लेकर फिर उपस्थित होंगे। तब तक विदा, नमस्कार।